दिन भर 11 जनवरी दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदर। ओबामा का विदाई भाषण, कहा बदलाव तभी होता है जब आम लोग इसके हिस्सेदार होते हैं।
The change only happens when ordinary people get involved and they get engaged and they come together to demand it.
दुनिया जहान में बात करेंगे साइप्रस के एकीकरण के प्रयासों के बारे में।
जब आजादी मिला तब भी एक अच्छा संविधान नहीं बना, दोनों के बीच गृह युद्ध शुरू हुआ। ग्रीस ने अपने ग्रीक ब्रादरी को मदद की और टर्की ने टर्किश और मुसलमानों को मदद किया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने विदाई भाषण में अमेरिका के लोगों से अपने लोकतंत्र को बचाने का आह्वान किया है। शिकागो में अपने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में बराक ओबामा ने कहा कि 8 साल पहले जब वो राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद अमेरिका हर तरह से बेहतर और मजबूत हुआ है। बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन रहे हैं, जो इस महीने की 20 तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। रूस ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि उसके पास निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में गोपनीय जानकारी है। अमरीकी मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि रूस के पास डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी हितों और उनके अंतरंग जीवन के संबंधित एक वीडियो है। रूस ने इन खबरों का खंडन किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है, ये रूस और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। जिस अंतरंग वीडियो और खबर की बात हो रही है वो एकदम झूठा है, जिसे आप कपोल कल्पना कह सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के शब्द आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आंकड़ों से पता चला है कि जर्मनी में पनाह मांगने वाले शरणार्थियों की संख्या में बीते साल नाटकीय रूप से गिरावट आई है। आंकड़े बताते हैं कि जर्मनी में पिछले साल 2,80,000 शरणार्थी आवेदक पहुंचे, जबकि उससे पहले यानी वर्ष 2015 में आवेदन करने वालों की संख्या 8,90,000 थी। जर्मनी के गृहमंत्री थॉमस डी मेजियर ने बर्लिन में संवाददाता सम्मेलन में कहा, साल 2016 में शरणार्थियों की संख्या सिर्फ 2,80,000 रही, उसके पहले के साल के मुकाबले ये संख्या काफ़ी कम है। मुझे लगता है कि बालकन मार्ग को बंद किया जाना और यूरोपीय संघ तथा तुर्की के बीच समझौता होना इस गिरावट की वजह हो सकती है। ये थे जर्मनी के गृह मंत्री थॉमस डी मेजियरे के शब्द। आंकड़ों से ये भी पता चला है कि पिछले साल जर्मनी पहुँचने वाले शरणार्थियों में सबसे अधिक संख्या सीरियाई नागरिकों की थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान से खबर मिल रही है कि हत्या के एक संदिग्ध अभियुक्त ने जमानत पर रिहा होने के बाद 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना को बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक हमलावर ने पहले उस पुलिस अधिकारी को गोली मारी जिसने उसे पिछले साल गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसने पुलिस अधिकारी की माँ, बहन और भाई को भी गोली मार दी। हत्या के बाद अपराधी फरार हो गया है। इस घटना से ईरान में एक तरह की सनसनी फैल गई है, क्योंकि ईरान में बंदूक संस्कृति और उसका असर बहुत बहुत कम नजर आता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी के पास पुलिस ने ताज़े पानी के 6,400 कछुओं को बरामद किया है, जिन्हें कोलकाता में एक बंदरगाह पर भेजने की योजना थी। इन जीवित कछुओं का वजन 4 टन से अधिक है। खबरों के मुताबिक इन कछुओं को स्थानीय लोगों ने गंगा के किनारों से पकड़ा था। इस सिलसिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अधिकारियों के मुताबिक जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो कछुओं की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का सदस्य है। जिन कछुओं को छुड़ाया गया है वो लुप्त प्रजाति के नहीं है, लेकिन उन्हें तस्करी के जरिए अक्सर बांग्लादेश भेजा जाता है। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में इन कछुओं का मांस बड़े चाव से खाया जाता है। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते कथित रूप से अगवा किए गए 4 सामाजिक कार्यकर्ताओं को खोजने की मांग के साथ हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों को इस बात की आशंका है कि सुरक्षा बलों ने इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है। इन लोगों ने सेना और चरमपंथियों की सोशल मीडिया पर आलोचना की थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के मौके पर शिकागो में आखिरी बार देश की जनता को संबोधित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर 8 साल रहने के बाद ओबामा ने अपने विदाई भाषण में कहा कि जब हम भय के सामने झुक जाते हैं तो लोकतंत्र प्रभावित हो सकता है, इसलिए हमें नागरिकों के रूप में बाहरी आक्रमण को लेकर सतर्क रहना चाहिए। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने अपना कार्यकाल खत्म होने के 10 दिन पहले अपने शहर शिकागो में एक जन समूह के सामने विदाई भाषण दिया। बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के दौरान उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अमेरिका में जनतंत्र को दरपेश खतरों की भी बात की। ओबामा का कहना था कि उन्होंने सैकड़ों आतंकवादियों का खात्मा किया जिसमें ओसामा बिन लादेन भी शामिल है।
डेमोक्रेसी कैन बकल व्हेन इट गिव्स इन टू फियर, सो जस्ट एज़ वी एज़ सिटिज़न्स मस्ट रिमेन विजिलेंट अगेंस्ट External aggression, we must guard against a weakening of the values that make us who we are. And that's why for the past 8 years, I've worked to put the fight against terrorism on a firmer legal footing. That's why we've ended torture, worked to close Gitmo, reformed our laws governing surveillance to protect privacy and civil liberties. That's why I reject discrimination against Muslim Americans.
ओबामा ने कहा कि इस बात की जरूरत है कि बाहरी हमलों के प्रति अमरीका सजग रहे, लेकिन उससे अधिक जरूरत इस बात की है कि हम उन उसूलों की रक्षा करें जिसके लिए हम जाने जाते हैं। बराक ओबामा का कहना था कि ग्वांतानामो को बंद करने की कोशिश भी की गई। ओबामा ने दावा किया कि उन्होंने अमरीकी मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव खत्म किया। उन्होंने इसी संदर्भ में समलैंगिक अधिकारों की बात भी की। ओबामा के कार्यकाल में ईरान और क्यूबा के साथ अमरीका के संबंध बेहतर हुए। दोनों मुल्कों के साथ दशकों से किसी तरह के कोई राजनयिक संबंध नहीं थे। अपने भाषण के दौरान अमरीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि नस्ली मामले में सभी अमरीकियों को और कदम उठाने की जरूरत है।
After my election, there was talk of a post-racial America, and such a vision, however well-intended, was never realistic. Race remains a potent and often divisive force in our society.
बराक ओबामा कह रहे थे, हमें नस्ली भेदभाव को खत्म करने के लिए बहुत कुछ और करना होगा ताकि वो सभी जो यहाँ रहते हैं उन्हें ये देश अपना लगे और उन्हें इससे प्यार हो। उन्होंने कहा कि हर तरफ बेहतरी के लिए जरूरी है कि दिलों में भी बदलाव हो, सिर्फ कानून काफी नहीं। बराक ओबामा का कहना था कि बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि बदलाव ही अमरीका की ताकत है। बराक ओबामा ने कहा कि हालांकि वो पद से हट रहे हैं, लेकिन वो अमरीकियों की सेवा करना बंद नहीं करेंगे। उनका कहना था कि वो अब एक आम नागरिक की तरह दूसरों के साथ खड़े होंगे, लेकिन वो सिर्फ उनमें ही भरोसा ना करें बल्कि लोग खुद में इस बात का भरोसा रखें कि वो बदलाव ला सकते हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब कुछ खबरें भारत से। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित सहारा बिड़ला डायरी मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर करते हुए इन डायरियों के बारे में जांच की मांग की थी। बताया जाता है कि ये डायरियां नवंबर 2014 में आयकर विभाग के एक छापे में बरामद की गई थी, जिनमें कथित तौर पर राजनेताओं को पैसे दिए जाने का जिक्र था। इनमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई और लोगों के नाम शामिल थे। मैंने नितिन श्रीवास्तव से पूछा कि ये पूरा मामला क्या था।
रियान साहब, सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण, जो बहुत नामी ग्रामी वकील हैं, उन्होंने सहारा और बिड़ला के दफ्तर पर आयकर जो छापे पड़े थे, उसके बाद कुछ राजनेताओं का कथित तौर पर ना माने के आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए अब कहा है कि जांच के लिए इस मामले में पर्याप्त सबूत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें उसने कहा है कि इस मामले में कोई निश्चित सबूत नहीं मिले हैं, जांच नहीं होगी, और उस कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ये भी अदालत का एक फैसला बड़ा अहम बताया जा रहा है कि दस्तावेजों को प्रमाण के तौर पर नहीं माना जा सकता। अगर हम इस मामले को देखें कि दरअसल मामला क्या है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस कथित डायरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले किए हैं। मिसाल के तौर पर आज कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कन्वेंशन था दिल्ली में, वहां पर भी राहुल गांधी ने इस पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की।
इन कागजों में लिखा है नरेंद्र मोदी जी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार 6 महीने में सहारा ने पैसा दिया।
जो आरोप लगते रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिरला समूह पर पड़े जो छापे थे आयकर के, उसमें जो समूह के उस तत्कालीन उपाध्यक्ष थे शुभेंदु अमिताभ, उन पर जो है कुछ 25 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप लगे थे और वो आरोप उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री ने लगाए थे। इस बीच विपक्ष का आरोप रहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये मामला तुरंत जो है मतलब निपटान आयोग के सुपुर्द कर पूरी तरह से दफना दिया गया था, लेकिन इसी के चलते जो बयानबाजी है वो तेज़ भी हुई थी और ख़ुद प्रशांत भूषण ने इस फैसले के बाद खासा अफसोस जाहिर किया।
मैं तो इसको एक सुप्रीम कोर्ट के लिए काला धब्बा की तरह देखता हूँ। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, इससे जो एक पूरा एक मुहिम थी कि भाई भ्रष्टाचार इस देश में ख़त्म होना चाहिए, भ्रष्ट लोगों की जवाबदेही होनी चाहिए, उस मुहिम को एक धक्का लगेगा।
प्रशांत भूषण ने कहा है कि मामला पब्लिक डोमेन में है और यही नहीं जबकि बहुत सारे दूसरे दस्तावेज भी सार्वजनिक हो चुके हैं, जाहिर है इसी वजह से उनकी सुप्रीम कोर्ट से असहमति दिखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को।
दिस डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अ बिग स्लैप टू ऑल दोज हु वांटेड टू स्कोर सम पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स।
संबित पात्रा कह रहे थे कि ये सब आरोप बेबुनियाद थे और इस पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। और संबित पात्रा ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने जो ताजा आरोप लगाए वो भी बिल्कुल बेबुनियाद है। बहरहाल जो भी फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है रेहान साहब, अब इस फैसले को जो आगामी विधानसभा चुनाव है वहां पर एक तरह से ढाल बनाने की शायद कोशिश करे, और अब देखना यह होगा कि विपक्ष जो है उस पर अब क्या रुख अख्तियार करता है।
ये थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। सोशल मीडिया पर बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव के वायरल हुए वीडियो के बाद गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं जांच के, मगर इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस में फौज पर भी उंगलियां उठने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सेना के लोगों ने साफ किया है कि सीमा सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन है, इसका फौज से लेना देना नहीं है। एलओसी के पास स्थित पोस्ट पर तैनात बीएसएफ के जवानों का बंदोबस्त खुद उनका विभाग करता है। बीबीसी संवाददाता सलमान रवि ने भारतीय सेना के पूर्व जनरल सैयद अता हसनैन से बात की और पूछा कि सेना बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के खाने का इंतजाम भी करती है।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की फोर्स होती है, जिसको एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कहते हैं। वो आर्मी से कोई नाता नहीं है, इसलिए जो सामान, खाना पीना, पेट्रोल डीजल, हथियार, एम्यूनिशन, ये सब चीज़ें पहुंचाना, प्रोविजनिंग करना जो है वो आर्मी की जवाबदारी है, और वो उनके यूनिट के बेस तक पहुंचाते हैं। यूनिट के बेस से ऊपर पहुंचाना यूनिट की अपनी जवाबदारी होती है। जैसे कि बीएसएफ की यूनिट है, खाना पकाने का तरीका जो है, कहीं किसी तरह की भी फौज हो वो अपना होता है, ट्रूप्स के मुताबिक, ट्रूप्स का जो चॉइस है, टेस्ट है, उसके मुताबिक होता है। तो आर्मी की जवाबदारी खत्म हो जाती है जहां पर बेस तक सामान पहुंचाने की, कमांड चैनल होता है उसमें कोई कमजोरी हुई है जिसने शायद किसी ने चेक नहीं किया है।
ये मतलब ये बीएसएफ के लेवल पर?
जी हाँ, जी हाँ, बीएसएफ के लेवल पे है। और मुझे तो ये भी बताया गया है कि जवान जो है इसका डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड भी काफी बुरा है।
लेकिन एक तो चीज़ है कि ठीक है, सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट किया जो नहीं करना चाहिए था, एक डिसिप्लिन जो यूनिफॉर्म फोर्स है उसके जो तरीके हैं उसके खिलाफ है, लेकिन जो मूल सवाल जो है वो ये है कि क्या अगर वो डिफॉल्टर रहा है या पास्ट उसकी हिस्ट्री खराब रही, तो क्या वो उस तरह का खाना डिजर्व करता है?
जी हाँ, ये तो बेशक कोई भी जवान हो जो यूनिफॉर्म पहना है, उसको जितना आप सबसे अच्छा बंदोबस्त दे सकते हैं वो डिजर्व करता है, वो तो इसलिए ही डज नॉट डिजर्व दिस। और इसलिए तभी मैं यही कहता हूं कि कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट जरूर हुई है और हमें उसको एक्सेप्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी।
लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था कि अब मान लीजिए कि वो वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पोस्ट तैनात हैं, तो क्या आर्मी जो है वो सुपरवाइज करती है कि भाई, चूंकि लड़ तो वो बॉर्डर पर ही रहा है, खड़ा तो बॉर्डर पर ही हो रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी में कमी ना आ जाए, इसकी वजह से क्या ये मॉनिटरिंग और जो है उसका सुपरविजन ये टाइम टू टाइम करते हैं, क्या फीडबैक लेते हैं कि नहीं?
अच्छा,
आप कोर कमांडर रहे हैं वहां पर, तो किस तरह का फीडबैक आप लेते थे जवानों से?
ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ऐसा है, जब बीएसएफ की यूनिट्स हमारे साथ रहती हैं वहां, तो इनका भी कमांड एंड कंट्रोल जो है तकरीबन दोगला होता है। अंडर कमांड तो आर्मी के हैं और आर्मी इनको बंदोबस्त कार्रवाई कर रही है, मगर साथ में इनके सेक्टर हेडक्वार्टर और फ्रंटियर हेडक्वार्टर भी होता है वहां पर, जो एक आईजी लेवल डीआईजी लेवल के नीचे होता है, जो डिटेल्ड में कमांड एंड कंट्रोल, इनका बंदोबस्त, कार्रवाई, सब चीजें, उनकी डिपार्टमेंटल चीजें जो है वो सब देखते हैं। अब मैं तो समझता हूं कि जी हां, एक अगर आपके नीचे कोई भी ट्रूप्स हैं तो जवाबदारी आपकी बनती है कि आप उनके बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोच विचार करिए और फीडबैक लीजिए। मगर इसके ऊपर
आप खुद कोर कमांडर थे उस इलाके में, आप किस तरह से ऑपरेट करते?
मैं आपको बताता हूं, ये आर्मी यूनिट से मैं फीडबैक डायरेक्टली लेता था, मगर बीएसएफ यूनिट से फीडबैक मैं थ्रू डीआईजी एंड थ्रू आईजी लेता था, क्योंकि मैं समझता था कि बीएसएफ के जवानों को बीएसएफ की यूनिट्स के अंदर फोन करके या ऐसे करके फीडबैक लेना दखल अंदाजी होगी। एंड देयरफॉर एसोसिएट फोर्स है, नीचे है मेरे, लड़ रही है मेरे साथ, मगर उनका भी कमांड एंड कंट्रोल है, उनके नीचे भी एक हायरार्की है, तो उनको ट्रस्ट करके उनसे मैं इसका फीडबैक लिया करता था।
आपको लगता है कि अब ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, अब खुद से भी इसका फीडबैक लेना जरूरी है, क्योंकि एफिशिएंसी पर और ऐसे मौके आएंगे जब उन्हें वाकई में काम करना है, पता चला उसने तो खाना ही नहीं खाया।
देखिए, एक ऐसा है कि एक एबरेशन से कोई जरूरी नहीं कि कोई सिस्टम पे हम समझें कि इसमें पूरा ऐब है। बेशक हमें कंसर्न थोड़ा और दिखाना चाहिए इसके लिए, एंड जिंजर अप करना चाहिए जिसको कहते हैं सिस्टम को, मगर इसके अलावा टू ट्राई एंड गो होलसेल इन चेंजेस करना, मेरे ख्याल में इसकी कोई जरूरत नहीं है इस वक्त।
जनरल सैयद अता हसनैन से बात कर रहे थे सलमान रावी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। अब बात चीन ताइवान संबंधों की। ताइवान में उस वक्त भय और तनाव का माहौल पैदा हो गया जब यह खबर आई कि चीन के युद्धपोतों का एक बेड़ा एक विमान वाहक पोत के नेतृत्व में ताइवान के बगल से कुतरा है। हालांकि चीन ने कहा है कि युद्धपोतों का बेड़ा दक्षिण चीन सागर में नौसेना अभ्यास करके लौट रहा था और इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ताइवान ने अपने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को तैयार करने के आदेश दे दिए। बीजिंग से बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडोनल्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं राजेश जोशी।
चीनी युद्धपोतों के बेड़े के आगे आगे विमान वाहक था और ये पोत दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास करके लौट रहे थे। ये खबर आते ही ताइवान ने अपने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को तैयार कर लिया। चीन की सरकार ने कहा है कि ये नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा है और इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर विश्लेषक कह रहे हैं कि चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाह रहा था। चीन के उप विदेश मंत्री लियू जेमिन ने कहा है कि इस अभ्यास से चीन और ताइवान के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन ताइवान को अपना ही एक बागी राज्य मानता है और ये कहता है कि वो उसका अभिन्न अंग है। हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग्वेन और अमरीकी अधिकारियों के बीच संपर्क हुआ जिससे चीन बेहद नाराज है। ताइवान की मुख्य भूमि संबंध परिषद के प्रमुख चांग शियाओ युए ने कहा है कि वो चीन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है।
मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत में सक्षम है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ किसी भी तरह की धमकी से चीन के साथ हमारे संबंधों के सिलसिले में कोई फायदा नहीं होगा। हमें मिलजुल कर भल मनसाहत बनानी चाहिए।
ये थे ताइवान की मुख्य भूमि संबंध परिषद के प्रमुख चांग शियाओ युए के शब्द। चीन की राजधानी पेचिंग में ताइवान संबंध कार्यालय के प्रवक्ता मा शियाओ गुआंग ने विमान वाहक युद्धपोत का अता पता नहीं बताया, मगर ये जरूर कहा कि नौसेना अभ्यास कोई नई चीज नहीं है।
24 दिसंबर 2016 से लियाओनिंग बेड़े ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में नौसेना अभ्यास किया। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उसकी ताईद मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ये सवाल रक्षा मंत्रालय या नौसेना से पूछ सकते हैं।
ताइवान संबंध कार्यालय के प्रवक्ता मा शियाओ गुआंग के शब्द। विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले दिनों में ताइवान और चीन के संबंध अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचेंगे, क्योंकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान पर विशेष ध्यान देने के संकेत दिए हैं।
ताइवान में लड़ाकू विमानों को तैयार रहने के आदेश। भूमध्य सागर के सबसे बड़े आजाद द्वीप साइप्रस के एकीकरण के लिए नए सिरे से कोशिश शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र की कोशिश से जिनीवा में ग्रीक और तुर्की वाले हिस्सों के नेता बातचीत कर रहे हैं। इरादा चार दशक से जारी समस्या का समाधान तलाशने का है। इस बार दुनिया जहान में वात्सल्य राय ने इसी मुद्दे की पड़ताल की है।
दुनिया जहान।
जो जमीन मोहब्बत की देवी की हो वहां दिलों की दरार कब तक कायम रह सकती है। करीब 4 दशक पहले बंदूक के जोर पर साइप्रस को बांटने वाली जो लकीर खींची गई थी उसे मिटाने की एक और कोशिश शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के दूत एस्पेन बार्थ आयद इस कोशिश को ऐतिहासिक मौका बता रहे हैं।
इफ इट सक्सीड्स आई थिंक दिस इज हिस्टोरिक फॉर द साइप्रस। दे हैव बीन ट्राइंग फॉर मोर देन फॉर सेवरल जनरेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओवर द डिवाइडेड आइलैंड।
अगर इसमें कामयाबी मिली तो मुझे लगता है कि साइप्रस के लोगों के लिए ये ऐतिहासिक होगा। वो कई पीढ़ियों से विभाजित द्वीप की समस्या के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि दुनिया के जिन हिस्सों में संघर्ष जारी है वहाँ भी इससे बहुत मजबूत संदेश जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र के दूत को जो उम्मीद है उसकी वजह भी है। ग्रीक हिस्से वाले साइप्रस के नेता निकोस एनेस्तासियादेस और तुर्की वाले हिस्से के नेता मुस्तफा अकिंची आज जो कोशिश कर रहे हैं उसके कई सदियों पहले से साइप्रस की हवाओं में यूनान की कथाएं घुली रही हैं। इन कथाओं में साइप्रस को मोहब्बत की देवी एफ्रोडाइट की जगह माना जाता है, लेकिन दुनिया भर के आशिकों को लुभाने वाला साइप्रस आखिर जब तक ताकत के जोर पर क्यों सम्मोहित होता रहा है? जानकारों के पास इसका भी जवाब है। ईसा पूर्व सिकंदर महान जब हिंदुस्तान की ओर बढ़े तो उनका एक पड़ाव साइप्रस भी था। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कई बार साइप्रस जा चुके आफताब कमाल पाशा कहते हैं,
सिकंदर ने भी अपने कब्जे में लिया था साइप्रस को ये कुछ अरसे के लिए। वो मिस्र में गए, शाम में गए, ईरान में आए, पंजाब तक आए।
लेकिन ये बात पुरानी है। बीते 400 साल का इतिहास तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य और साइप्रस के ब्रिटिश उपनिवेश बनने की कहानी सुनाता है। साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त रह चुके जी पार्थ सारथी कहते हैं,
इसका इतिहास अजीब सा रहा है। इसके पास दो बड़े देश हैं, टर्की और ग्रीस। जो बहुमत के लोग हैं वो ग्रीक हैं, ईसाई हैं। करीबन 300 साल इसका शासन टर्की ने किया और उसके बाद अंग्रेज आए।
वक्त बदला। 1950 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गुरिल्ला संघर्ष शुरू हुआ।
आजादी का जंग जो था, ग्रीक सिप्रियट्स उस पर सबसे अहम हिस्सा लिया। दुनिया भर में लोग जानते हैं, आर्च बिशप मकारियस उनके नेता थे, भारत के बहुत ही निकट थे। दिल्ली में एक बड़ा रोड भी मोतीबाग के पास आर्च बिशप मकारियस रोड उनके नाम पर बनाया गया है।
साल 1960 में साइप्रस को आजादी मिल गई। शासन से बागडोर छोड़ने के बाद भी ब्रिटेन ने वहां 2 हवाई अड्डे बरकरार रखे। इराक पर हमले के वक्त ब्रिटेन और अमरीकी विमानों ने इन अड्डों का इस्तेमाल किया था। साइप्रस को आजादी मिली, लेकिन इस द्वीप की दिक्कत खत्म नहीं हुई। एक नई दिक्कत शुरू हो गई। पार्थ सारथी बताते हैं,
2 समुदाय थे वहाँ, ग्रीक जो ईसाई है, तुर्क जो सुन्नी मुसलमान है। इन दोनों के बीच मतभेद गहरे रहे। जब आजादी मिला तब भी एक अच्छा संविधान नहीं बना। दोनों के बीच गृह युद्ध शुरू हुआ। ग्रीस ने अपने ग्रीक बरादरी को मदद की और टर्की ने टर्किश और मुसलमानों को मदद किया। टर्की ने हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद एक किस्म का विभाजन निकला। उत्तरी साइप्रस जो है वो टर्की के हाथ में, दक्षिण साइप्रस है वो ग्रीक के हाथ में।
विशेषज्ञों की राय है कि साल 1974 में तुर्की ने जब साइप्रस पर हमला किया उसमें अमेरिका का समर्थन भी था। साइप्रस के नेता आर्क बिशप मकारियोस गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े थे और अमेरिका उन्हें पसंद नहीं करता था। हमला करके तुर्की ने उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया और तब से उसके करीब 30,000 सैनिक वहाँ तैनात है। बंटवारे में राजधानी निकोसिया भी 2 हिस्सों में बट गई। बीच की ग्रीन लाइन पर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात हो गई, जिसके सैनिक आज भी पेट्रोलिंग करते हैं। ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनन, इसराइल और मिस्र जैसे देशों के करीब इस द्वीप का 1/3 हिस्सा तुर्क मूल के लोगों के पास और 2/3 हिस्सा ग्रीक मूल के लोगों के पास है। साल 1983 में राउफ डेंगटाश ने तुर्की वाले हिस्से को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदन साइप्रस बनाने का ऐलान किया, लेकिन इसे तुर्की के अलावा किसी देश ने मान्यता नहीं दी। इस बीच ग्रीन लाइन को मिटाकर एकीकरण की कोशिश भी होती रही। साल 2004 में एकीकरण की कोशिश को तुर्की मूल के लोगों ने समर्थन दिया था, लेकिन ग्रीक मूल के लोगों ने इसे बहुमत के साथ खारिज कर दिया। ग्रीक हिस्से वाला साइप्रस साल 2004 में ही यूरोपीय संघ का हिस्सा बना। ग्रीस में आर्थिक संकट आया तो इसका असर साइप्रस पर भी हुआ। यूरोपीय संघ ने उसे बेल आउट पैकेज दिया। प्रोफेसर पाशा कहते हैं,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइप्रस में ये है कि वहाँ पानी की किल्लत है। ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वहाँ पानी नहीं है। नॉर्दर्न टर्की का प्रॉब्लम उन्होंने हल कर लिया कि पाइपलाइन डाल के टर्की से डायरेक्ट पानी उनके इलाके में ला रहे हैं। लोग परेशान हैं कि वहाँ कीमतें बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल से लेके गैस से लेके, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में रिसेशन चल रहा है और ग्रीस के साथ उनका आर्थिक संबंध बहुत गहरा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति का काफी इन पे इम्पैक्ट हुआ है।
कहते हैं कि विवाद बेवजह नहीं होते और दोस्ती भी बिना मतलब नहीं होती। साल 2015 में तुर्की के हिस्से वाले साइप्रस में मुस्तफा अकिंची ने शांति समझौते को आगे बढ़ाने के वादे के साथ चुनाव में जीत दर्ज की। दूसरी तरफ साल 2013 में जीत हासिल करने वाले एनेस्तासियादेस ने भी मुस्तफा की जीत का स्वागत किया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी शुरू हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। भौगोलिक तौर पर अहम होने की वजह से संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के दूसरे अहम देश भी चाहते हैं कि साइप्रस की समस्या जल्दी दूर हो जाए। जी पार्थ सारथी कहते हैं,
देखिए ये एक ऐसी जगह है जो इजराइल के पास है, इजिप्ट के पास है, सीरिया के पास है, लेबनान के पास है, ब्रिटेन के अड्डे हैं वहाँ, जो अमेरिकन हैं उनके भी निकट संबंध हैं, ग्रीक्स कई रूस के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, तो कई महाशक्ति हैं जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं। पिछले 6-8 साल में कहा जाता है कि सागर में बहुत ही बड़ा भंडार है प्राकृतिक गैस और तेल का, तो हर एक को यहाँ इंटरेस्ट है। 2004 को एक प्रारूप निकला समझौता के लिए, उस समय के महासचिव थे कोफी अनान, उन्होंने जो योजना बनाई वो उसको आप आगे ले जा रहे हैं और प्रयास संयुक्त राष्ट्र ये कर रहा है कि दोनों पक्षों को एकत्रित करके एक किस्म का फेडरेशन बनाए।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेश एकीकरण की कोशिश को ऐतिहासिक मौका बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि नफरत की दीवार बनाना आसान है, उसे गिराना इतना आसान नहीं है। उम्मीदें हैं तो उसकी वजह है दोनों पक्षों की जरूरतें। प्रोफेसर पाशा कहते हैं,
इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर सकते हैं और टूरिज्म पे भी काफी लोग वहाँ जाने के लिए बेचैन है, रशियन वहाँ बड़ी तादाद में जाना चाहते हैं और जो देश गैस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जैसा टर्की है, लेबनान है, सीरिया है, इजिप्ट भी है, ये अभी पूरी तरह उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं क्योंकि साइप्रस का मामला हल नहीं हुआ है, वो डरते हैं कि जंग छिड़ सकती है। अगर उनकी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होती है तो मेरे ख्याल से वो मिलजुल के रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों का नुकसान हुआ है।
विभाजन की दीवार गिराने के लिए कई पेचीदा मुद्दों को हल करना जरूरी है। साल 1974 के हमले के वक्त ग्रीक मूल के लोगों ने जो संपत्ति छोड़ी थी उसके मुआवजे का सवाल, तुर्की के सैनिकों की वापसी की स्थिति में तुर्क मूल के लोगों की सुरक्षा का सवाल और सबसे बड़ा सवाल ऐसे समझौते की गारंटी कौन लेगा। पारसार्थी कहते हैं,
इस साइप्रस के कितना हिस्सा ग्रीक्स को जाएगा, कितना हिस्सा टर्क्स को जाएगा, बहुत ही पेचीदा समस्या है। तुर्की ये चाहता है अगर इस तरह का समझौता हुआ तो किसी भारी शक्ति को इसे गारंटी करना चाहिए, कौन करेगा, यूएन करेगा, यूरोपियन संघ करेगा, इन सब चीज पर एक किस्म का आम सहमति बनाना पड़ेगा।
सीरिया से आने वाले शरणार्थियों का संकट हल करने के लिए यूरोपीय संघ भी इस मामले को निपटाना चाहता है। हालांकि पहले चरण में दोनों पक्षों के नेताओं को सहमति कायम करने की कोशिश करनी है। अगर दोनों नेताओं की बातचीत में प्रगति हुई तो इसके बाद ब्रिटेन, ग्रीस और तुर्की के नेता बातचीत में शामिल हो सकते हैं। अगर सहमति बन सकी तो जनमत संग्रह होगा और उसका नतीजा ही साइप्रस में इतिहास का नया अध्याय रचेगा। तमाम बाधाओं के बीच उम्मीद की लौ लगातार रोशन है और इस बीच यूनानी किंवदंतियों की देवी एफ्रोडाइट की याद आ जाती है, तो क्या ये महज संयोग ही है? और जब मोहब्बत की देवी आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हो तो अलगाव कब तक रहेगा? इस सवाल के जवाब का इंतजार पूरी दुनिया को है। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने विदाई भाषण में अमेरिका के लोगों से अपने लोकतंत्र को बचाने का आह्वान किया है। रूस ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि उसके पास निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक अंतरंग वीडियो है। आंकड़ों से पता चला है कि जर्मनी में पनाह मांगने वाले शरणार्थियों की संख्या में बीते साल नाटकीय रूप से गिरावट आई है। ईरान से खबर मिल रही है कि हत्या के एक संदिग्ध अभियुक्त ने जमानत पर रिहा होने के बाद 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।